आयत 6 देखिएगा, वयस्ताजिलूना बिस्सैयति क़ब्लल हसना, ये लोग जल्दी मचा रहे हैं आपसे बुराई के लिए अजाब भलाई से पहले, अभी इनको पूरी भलाई मिली कोई नहीं और अजाब की जल्दी करते हैं। ये क्या है, कुफारे मक्का की जुरत, बार बार अल्लाह के नबी को आके जिज करते थे, कहते थे अच्छा फिर आए क़यामत, क्यों नहीं आ रही, व्हेन इट विल बी, कब आएगी, ऐसे ही नारे लगा दिए आपने, रोज़ धमकियां देते हैं। अच्छा ये क्या सोच बता रही है इनकी, कि उनको 100% यकीन था कि क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह कहते हैं इनको बता दो, वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसलात, हालांकि इनसे पहले भी बहुत सारी मिसालें गुजरी हैं। मसलात, मसलतुन की जमा, मीम सालाम है, मिसल कहते हैं मिलती जुलती को, यहाँ इससे मुराद है पिछली कौमों के अजाब। मसूला क्यों कहा इसको, क्योंकि जैसा उनका जुर्म था ना वैसे इनको सजा मिली। कौम लूत का इंजाम याद कर लीजिए, सर में घुसे और प्राइवेट पार्ट से निकले, क्योंकि उनका जुर्म सोच से शुरू हुआ और फेल पे ख़त्म हुआ। यही बात अल्लाह कह रहे हैं, पिछली कौमों की मिसालें इनको पूछ लो, क्या वो नहीं गुजरी, तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। वइन्ना रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम, और यकीनन आपका रब लोगों के हक में माफ़ करने वाला है इनके जुल्म के बावजूद, यानी ये उसकी शान गफ्फारी है, उसकी रहमत है कि इनके इतने मुतालबे, कब क़यामत आएगी, ये होगा, इसके बावजूद अभी तक अजाब नहीं आ रहा, क्योंकि अभी अल्लाह का वक्त नहीं आया उस फैसले को करने का। वइन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब, और यकीनन आपका रब सख्त सजा देने वाला है। ऐसा प्यारा रब जो हिल्म के साथ पकड़ता है, तुम उसको गुस्सा दिलाते हो ताकि वो तुम्हें पकड़े, ये भी एक मुतालबा। अभी तक कितनी बातें पूरी हुई, अजाब के मुतालबे, दोबारा जी उठने के मुतालबे, कायनात क्यों बनी, इसका मकसद क्या है। अब आप देखिएगा कि अगली आयत में, आयत नंबर 7 में, अल्लाह ताला इनके एक और सवाल का जवाब देते हैं। वयकूलुल्लज़ीना कफरू, और काफिर लोग कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिहि, क्यों नहीं उतारी गई इस शख्स पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से। ये निशानी पता नहीं कौन सी मांगते थे। अल्लाह कहते हैं ये जो मौजज़े और निशानियां मांगने वाले हैं, इनको कह दो, इन्नमा अंत मुनज़िरुन लिकुल्ली क़ौमिन हाद, ए नबी आप तो बस खबरदार कर देने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी है। यानी आपका काम निशानियां और मौजज़े देना नहीं है। सवाल पैदा होता है कि मक्का वाले आखिर कौन सी निशानी चाहते थे, तो निशानी चाहते थे स्टेटस की। आप बहुत आला घर से होते, मालो दौलत होता, बड़े लोग आपके आगे पीछे होते, ना तो आपका कद कोई हमसे बड़ा, चले आंखें ही दो की जगह चार होती, आपकी ज़मीनें होती, आपकी प्रॉपर्टीज होती, सोना चांदी बाग। देखिए जिनकी नज़रों में दुनिया बड़ी होती है ना, फिर वो दीनदारों से भी दुनिया ही की चीज़ें देख रहे होते हैं। कुछ भी आपके पास बड़ा नहीं है तो हम आपको बड़ा कैसे मान लें। जैसे आज के दौर में आप देखिए, कोई दीन का आलिम है ना, बड़ी से बड़ी बात कर देगा ना, लोग कहेंगे मौलवी है ना आखिर, और दुनिया वाले की छोटी सी डिग्री सुनते हैं ना तो दिल बैठने लगता है, अच्छा जी इतना पढ़े लिखे लोग हैं। तो पता क्या चला कि लोग दीनदार को भी दुनिया के पैमाने से नापते हैं। अल्लाह कहता है कि दाइये दीन के पास सबसे ज़्यादा वज़न दलील का होता है। अल्लाह की कुदरत की जो निशानियाँ अभी तक देखी, ये कहाँ की थी, इस कायनात के अंदर की थी। अब अल्लाह ताला माँ के पेट में क्या हो रहा है, इंसान को अंदर की कहानियाँ सुना के अपनी बड़ाई साबित करते हैं। कैसे, अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा, अल्लाह खूब जानता है कि हर मादा क्या उठाए हुए है। देखिए मा तहमिलु कुल्लु उनसा, एक एक लफ्ज़ पे गौर करेंगे ना, मा मैंने जो, छोटी चीज़, मन होगा ना तो बिग थिंग है, यानी बच्चा जिंदा भी है कि नहीं। माँ लफ्ज़ से पता चल रहा है कि माँ के पेट में जो बच्चा है, इज इट अलाइव और डेड। माँ गैर अकिल के लिए आता है, मन उसके लिए। तहमिलु हमल से, वो बोझ जिसको खुशी से उठाया जाए। कुल्लु उनसा, उनसा को समझ लीजिए, उर्दू में बोलते हैं मुजक्कर मुअन्नस, तो जो मुअन्नस लफ्ज़ है ना, नून सा, ये उनसा है, फीमेल के लिए कहते हैं। हर उनसा, इंसान की भी फीमेल, जानवर की भी फीमेल, जैसे बकरी गाय भैंस और इसी तरह से। इस आयत को सुनते वक्त तो वाकई आपका दिल गवाही देगा कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कहते हैं हर माँ जो अपने पेट में रखे, ये प्रेग्नेंट औरत की बातें हैं, माँ को तो खुद भी नहीं पता कि मेरे पेट में क्या है, बच्चा है, बच्ची है, बेटा है, बेटी है। और बाद दफ़ा तो माँ को ये तक नहीं पता होता कि प्रेग्नेंट हो चुकी है, जब तक अल्लाह ना चाहे उसको नहीं पता। कोई गैजेट यूज़ करेगी तो पता चलेगा, अल्लाह को फौरन पता चल जाता है कि इस औरत ने कंसीव कर लिया। इंसान मशीनों से देखता है, मेडिकल के असबाब यूज़ करता है, फिर इंसानों को गलती लगती है, लेकिन अल्लाहु यालमु, अल्लाह को तो गलती कोई नहीं लगती कि कहा था कि बेटा होगा, बाद में पता चला बेटी होगी, ऐसा नहीं होता। चलिए इतनी बात लिख लें कि बच्चे की सेक्स, बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है, एक है या दो है, अल्लाह को पता पहले दिन से या उससे भी पहले था। दूसरी चीज़ अल्लाह को क्या पता है, जहाँ भी लगा लीजिएगा अगर चाहें, वमा तगीदुल अरहाम, और वो जानता है किस कदर रहम सुकड़ते हैं। रहम कहते हैं यूट्रस को जिसमें बच्चा पलता है। वमा तजदाद, और जब बच्चा बढ़ता है तो इसके बढ़ने से कितनी बढ़ाई हुई, अल्लाह को एक एक तब्दीली का पता है। क्योंकि वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर चीज़ इसके यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक काम कर रही है। यहाँ ज़रा थोड़ी सी ये तगीदुल अरहाम और तजदाद पे बात करके देखिए कैसी खूबसूरत साइंस पढ़ा दी अल्लाह ने सिर्फ आधी आयत में। लफ्ज़ तगीद को देखिएगा, गादा या गीदू से पीछे पढ़ चुके हैं, फलम्मा गीदलमा, पानी खुश्क हो गया हजरत नूह के किस्से में। तो गीद कहते हैं खुश्क होने को, अरबी जुबान में दर्द जह यानी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस, जो बच्चे की डिलीवरी के वक्त पेन्स होती है ना, उसके लिए लफ्ज आया इधर। पहले तो माँ के पेट में बच्चा था, बच्ची थी, बच्चे का वजन कितना है सब अल्लाह को पता। अब जो दूसरी बात पता है कि माँ के पेट में जो चेंजेस हो रही हैं बच्चे में, उसका यूरिक एसिड कितना है, ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं मिल रही, उसमें कैल्शियम की कमी तो नहीं, अल्लाह को सब पता है। गीदा कहते हैं वो जगह जहाँ पानी ठहर जाए और ज़मीन उसे जज्ब कर ले। ऐसे ही माँ के रहम में एक वाटर सैक होती है, नाम सुना होगा झिल्ली, ये उसकी तरफ इशारा है कि माँ के पेट में बच्चा जिस झिल्ली में है उसमें पानी ज़्यादा है या पानी कम है, इसका अल्लाह को पता है। अल्लाह अकबर। माँ के जिस्म में क्या जाता है, माँ के जिस्म में क्या इंड्यूस कराया जा रहा है, क्या हो रहा है, अल्लाह को सब पता है। रहम जो अपने अंदर रखते हैं, तो ये क्या बात समझ आ गई, इसकी मुख्तलिफ तफसीर मुफसरीन ने बयान की कि पहली बात यह है कि माँ के पेट में बच्चा बढ़ रहा है या सुकड़ रहा है, अल्लाह को इसका पता है। उंगलियाँ उसकी पाँच ही हैं या पाँच से ज़्यादा हो गई या तीन रह गई, अल्लाह को इसका पता है। यानी ग्रोथ नॉर्मल है कि नॉर्मल है, अजीबुल हलकत बच्चा है या सेहतमंद है। कभी तो एक भी मुकम्मल बच्चा नहीं पैदा होता और कभी दो दो या तीन तीन बच्चे भी पेट में आते हैं। कभी आप माँ के पेट में बच्चे की तस्वीरें देख लेना जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है ना, तो कभी भी आपको अपनी ये शक्ल बुरी ना लगे। इस तरह लटक रही होती है स्किन कि जैसे जली हुई स्किन होती है, छुरियाँ पड़ी होती हैं। आपको पता कि माँ के पेट में बच्चे पे एक ऐसी कैफियत आती है कि उसकी धूम होती है, टेल होती है उसकी, एक ऐसी स्टेज आती है कि बच्चे का मुंह बिल्कुल बंदर के मुंह का होता है। अल्लाह को ये सब पता है, अल्लाह को हर चीज़ का अंदाज़ा। कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, क्या मिक़दार, कितने मर्द होंगे, कितनी औरतें, ये रेशो किसने बनाया। तुम तो हमेशा बेटा ही चाहते हो, पर अल्लाह को पता है कि बेटियाँ भी तो देनी है, तभी तो कायनात चलेगी। आप तो अपनी फैमिली प्लानिंग बड़े शौक से कर लेते हैं अपने गुमान के मुताबिक, ये जानवरों की नस्लों को कौन सेट कर रहा है, ये उसको पता है। अगर आज डायनासोर नहीं मिलते, किसने इनको ख़त्म किया, अगर वो उसी रफ्तार से चल रहे होते जैसे बन रहे थे, आज इस दुनिया में इंसानों के लिए जगह न होती। शुरू में चूंकि इंसान थोड़े थे, अल्लाह ने बड़ी बड़ी मखलूकात पैदा की, बड़े बड़े जानवर है, गैंडा और आप देखेंगे इस तरह की। अब इंसान बढ़ते जा रहे हैं ना, तो आप देखिए दिन ब दिन बड़े जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं। इसको सुनकर आपके दिल में क्या हुआ? क्या हम उस रब से अपने आप को छुपा सकते हैं जिसको मेरे पेट के अंदर होने वाली तब्दीलियों की भी खबर है? क्या मैं अपने दिल की बातें उससे छुपा सकती हूँ? अल्लाह हो गया, किसका दिल करता है फिर लोगों से बातें करने को जिसको रब से ये बातें करनी आ गई? मैं क्यों किसी के सामने सर फोड़ूं? मेरा रब मेरे इतने खूबसूरत मामले जानता है, मैं क्यों डॉक्टरों से पूछूं मेरे पेट में क्या मसला है, क्या खराबी है, क्या बच्चे का है? मैं क्यों सारा दिन टेस्टों के पीछे भागूं? अब वो टेस्ट, अब बच्चे, पहले माँ के टेस्ट होते थे, अब बच्चों के टेस्ट शुरू हो गए। पहले माँ को टीके लगते थे, अब बच्चों को टीके लगने लग गए। करके देख लीजिए, मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ आज के दौर में हैंडीकैप बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं पहले दौर की निस्बत। एक दफा रब पे डाल के तो देखे मामले अपने। जो लोग हर वक्त आर्टिफिशियल दवाएं खाते, टेस्ट करवाते, ये पता चल जाए अब अल्ट्रासाउंड है, आज ये है, आज MRI फला, देखिए एक अल्लाह ना करे अल्लाह किसी को बीमार कर दे वो तो एक और बात है, एक है सेहत के हाल। आज से 25-30-40 साल पहले आप अपनी माओ अपनी नानियों को पूछे क्या प्रेग्नेंट होना कोई बीमार होना होता था? ये आज जो अपॉइंटमेंट ही नहीं जान छोड़ती हमारी, ये किस जान की अपॉइंटमेंट्स है? आज नाखनों के हम विटामिन चेक करा रहे हैं, तो अब उंगलियों के चेक हो रहे हैं, तो अब सर के बाल चेक हो रहे हैं, तो दांत चेक, क्योंकि मर ना जाए तो फिर जीते हैं, मौत तो फिर एक लम्हे में आ जाती है। जितना इंसान इस जिस्म के बुत को देखना पड़कना शुरू होता है उतनी गड़बड़ें होती हैं। आज खुद डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया कि प्रेगनेंसी में माओं को ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए ये अल्ट्रासाउंड और रेजी से, क्योंकि बच्चे पर इसका असर आता है। पहले खुद चीज़ें निकालते हैं, फिर वो टेस्ट करवाते हैं, फिर बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं तो फिर पीछे कर देते हैं। कभी किसी औरत ने तो ये भी नहीं चेक किया था कि प्रेग्नेंट हूँ भी कि नहीं। अल्लाह ने एक फितरी निज़ाम रखा हुआ, खुद ही पता चल जाता है 2-3 महीने में, खुद बहुत मूवमेंट से पता चल जाएगा कि पेट में कुछ है, बिलीव मी। यानी एक सिस्टर थी, उन्होंने सुनाया कि एक तो बच्चा उनका हुआ बड़ी लेट, काफ़ी लेट था, जिसमें लोग सोचते हैं कि बच्चा हो ही नहीं सकता। वो कहती हैं कि मैं समझी कि मेरा मीनोपॉज शुरू हो गया। अब आप समझेंगे इस बात को खुद से। कहती नहीं हुआ, पीरियड्स तो नहीं हुए, मैंने समझा ख़त्म हो गई है। फिर कहती कि मुझे ना अपने पेट में कुछ तकलीफ महसूस होती, तो मुझे लगा कि मेरे पेट में रसौली है। सुना होगा ना आपने कि पेट में बाद जब ऐसी मसल्स बन जाती हैं जो मूव करती हैं। कहती बिलीव मी कि मैं रसौली समझकर डॉक्टर के पास गई, और शायद 8th month था उनका, और वो इतनी खुश कि लोग मुझे डराते थे कि इसका बच्चा हुआ तो हो नहीं होगा, अल्लाह ने उसको वो 9 महीने की तकलीफ 1 महीने की कर दी। कहती इवन आई कुडंट थिंक कि मेरे पेट में बच्चा है, और 1-1.5 महीने में बच्चा उसकी गोद में आ गया। आप क्या समझेंगे उस रब को? बीबी सारा ने कौन से अल्ट्रासाउंड कराए, कौन से इलाज कराए कि 70s-80s में उनको बच्चे मिले? नहीं दिए ना अल्लाह ने बच्चे, सुकून से बैठे। जो दे दिए उनकी खातिर करें, जो दिए शुक्र कीजिए। हर वक्त फितरत के निज़ाम को गड़बड़ों में ले रहे हैं, बेटा नहीं तो बेटी, बेटी नहीं तो बेटा। अब ऐसी मुसीबतें शुरू हो गई कि ये तरीका रख लें तो फिर बेटा पैदा होगा, ये कर लें तो बेटी होगी। आप खुदा क्यों बनते हैं? अल्लाह ने मिकदार रखी है, और अगर एक खूबी आ जाए ना आपके अंदर, तो आपको इनमें से किसी मुश्किल में पड़ने की जरूरत नहीं। यकीन करें बच्चियाँ रुल जाती हैं, इतने सख्त टेस्ट होते हैं कि क्या मौत की और तकलीफ होती होगी, और हार्ट अटैक की, जो ऐसे सख्त टेस्ट होते हैं कि अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी ना ऐसी चीज़ों में लेके जाए। लेकिन करवा के फिर चैन नहीं आता, फिर कहते हैं चलो अब सब फिर एक और कर लेते हैं। करिए, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप इस गम को अपने दिल से क्यों नहीं निकाल देते? औलाद वाले भी उतने खुश नहीं होंगे जितना बगैर औलाद वाला खुश होगा, कि उसको यकीन है कि मेरे मामले में मेरे रब का फैसला ही खूबसूरत है। हम तकदीर का इनकार कर करके अपने लिए सिर्फ और सिर्फ आंसू लेते हैं। एक दफ़ा हंस के कह के हाँ ये मेरे रब का फैसला है, बस फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं। और याद रखिए कि मौजज़े अल्लाह ताला सिर्फ नबियों के साथ नहीं करता, अल्लाह हर दौर में हर काम कर सकता है। तो ये आयत पढ़ के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ही तो मेरे करीब है, कहीं कि तुम उससे दूर नहीं भाग सकते। आलिमुल गैब, आयत नंबर 9 को देखिएगा, आलिमुल गैब, गैब को जानने वाला, हिडन को जानने वाला, अनसीन को जानने वाला, किसी मशीन की उसको जरूरत नहीं है तुम्हें देखने की, वह शहादा और जाहिर को, गाजिर को, हाजिर को भी जानने वाला, अल कबीर सबसे बड़ा, अल मुताल बहुत बुलंदी वाला। इस आयत को हाईलाइट करें, इस आयत में क्या आया है आप देखें जरा गौर से, कोई हुक्म है इस आयत में, कोई डूस कोई डोंट्स, कोई शरीयत का हुक्म, कोई कायनात की बात, कोई पिछली कौमों की बात, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के 5 नाम हैं, आलिमुल गैब वश्शहादतिल कबीरुल मुताल। कभी इन चारों पांचों नामों की जाके आप तफसीर सुन ले, अस्माउल हुस्ना में से आपको अपना लगेगा। जिसको जानते नहीं है ना, हमें उसकी वैल्यू भी नहीं पता होती, इसलिए एक इंसान अपने आप की फिक्र करे। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल, इसके इल्म में बराबर हैं तुम में से जो बात को दिल में छुपाए, वमन जहर बिही, और जो इसको बुलंद कर दे, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, चाहे तुम बात बताओ या ना बताओ, एक बराबर, सब उसके लिए एक जैसे हैं। और दूसरी भी क्या चीज उसके लिए बराबर है, वमन हुआ मुस्तखफिम बिल्लैली वसारिबुम बिन्नहार, और वो जो रात की तारीकी में छुपे हुए हो और जो दिन की रोशनी में चलते फिरते हो, सब बराबर है अल्लाह की नजरों में, उसको सब पता है। यहाँ पे वो बात पूरी हुई है, अभी जो पीछे से रहम वाली चल रही है, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। क्या अल्लाह के लिए बराबर है, तुम छुपाओ दिल में कोई बात नहीं, चुपके चुपके मांगो उससे, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, तो भी उसको पता है, और तुम ऊंची आवाज से उसको पुकारते हो तो भी उसको पता है, उसको कोई मसला नहीं लगता इन सारी चीजों में। और कोई रात को चलता है, कोई रींगता है, कोई कीड़ा, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई मच्छर, कोई ऐसी चीज जो दिन में नहीं निकलती, उसको उसका भी पता है। और रात को परिंदे जो अपने घोंसलों में छुपे होते हैं, उसको उनका भी पता है। तुम इंसानों घरों में चले जाते हो, बाहर नहीं घूमते, मुस्तखफिम बिल्लैल, तुम रात को जाके खुफिया तरीके से छुप जाते हो ना, पता है उसको। हाँ बस सारिब, सारिब एक्टिव के मानों में चलने वाला, गलियों में फिरने वाला, सरूप कहते हैं राहों में चलने वाले को, अपने रुख पर चलने वाला। अगर आप कभी ऊपर से जहाज से देखें, या चलें आप किसी ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो नीचे जरा मेन रोड पे देखा करें क्या हो रहा है, सब चलते फिरते आपको ऐसे लगेंगे जैसे छोटे छोटे, क्या कहूँ, जर्रे झूम रहे। अल्लाह कहते तुम सब मेरी नजरों में मौजूद हो। तो जो रब माँ के पेट में जाके झांक लेता है, क्या वो मेरे और आपके दिल में उठने वाले तूफानों को नहीं जानता? आप देखिए ज्वार भाटे होते हैं ना समंदरों में, उसको उनका पता है। तो मेरे दिल में जो तड़प है, जो तलब है, और जो बेहिसी है, क्या उसको नहीं पता? सब कुछ उसको पता है। बस कहते हैं ये जो तगीद और तरहम है, इसकी चंद बातें नोट कीजिएगा, अमेजिंग है, रियली अमेजिंग है। पिछले साल हमने दौरे कुरान में आपको इस पे एक वीडियो दिखाई थी, अगर जाके इसी बारे में जाके देखिएगा तो माँ के पेट में जो बच्चे की सारी मूवमेंट्स है उसके बारे में एक वीडियो थी। कम क्या होता है, मुफस्सरीन इस पे जमा करते हैं चीज़ों को, हम उनकी बातों को जमा करें तो क्या बनेगा, नंबर एक हमल की मुद्दत, यदि बच्चा 9 महीने 10 दिन ही लेगा, या 7 माह का ही पैदा हो जाएगा, या हो सकता है 9 महीने से 20 दिन ऊपर चले जाएं, 10 रात, ये मुराद है। दूसरी बात है डिलीवरी का वक्त कब आएगा। आप देखते हैं कि डॉक्टर भी इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कब ये होगा, जब अल्लाह चाहेगा होगा। आप अल्लाह पे डाल दें तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में नहीं होता कि ये वक्त कब होगा। तो रहम कितने अरसे तक बच्चे को रखता है और निकाल देता है, ये मुराद है। बस वो पैदाइश के असरात भी शुरू हो जाते हैं, फिर भी नहीं पता होता कि डिलीवरी कब होगी। फिर इसी तरह तीसरी इसकी एक मिसाल क्या आती है कि बच्चे का साइज और हुजम क्या होगा पैदाइश के वक्त में, ये अल्लाह को पता है। तख्लीक में क्या कमी रह गई है, कोई उज्व अधूरा तो नहीं, कोई अज़ा ज्यादा तो नहीं, ये मुराद है। इंसानों के सिर्फ अंदाजे हैं, हुक्म अल्लाह का चलता है। इसी तरह बात कहते हैं कि रहम में मौजूद पानी की मकदार कम या ज्यादा हो, ये मुराद है। माँ जितना पानी पी ले, जो मर्जी करे, रहम में उतना ही जाता है जितना अल्लाह चाहता है। اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ڈیلیوری کے بعد کی بلیڈنگ ہے، حیض کی طرف اشارہ ہے، کہ کسی کو بعد میں زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے، کسی کو بالکل نہ ہوگی. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد رحم خود بھی ہے، کہ بعض کا رحم خود بخود بعد میں جا کے سکڑ کے اپنی اصل شکل میں چلا جاتا ہے جو پہلے پھولا ہوا تھا، اور کچھ کو اس کے لیے بہت بیلٹیں پہننی پڑتی ہیں کیونکہ پیٹ لٹک جاتا ہے. جو کچھ ہے اللہ کی نظروں میں ہے اور کنٹرول ہے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ ماں بچے کو تو دیکھ سکتی ہے، اپنے رحم کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ بچے کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے اندر کو بھی دیکھتا ہے. کتنا زیادہ اس کا خوبصورت نظام ہے. آج یہ جتنے گیجٹس ہیں نا جو اندر مشینوں کو ڈالتے کے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس علم کے آگے کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ اور ہم ان سے کتنے مرعوب ہیں، خوش ہوتے ہیں کوئی نیا ٹیسٹ ایجاد ہو جائے، کہتے ہیں فلاں ٹیسٹ کروانا ہے، ہزاروں دیں گے کرائیں گے تاکہ وہ بات پتہ چل جائے جو کچھ مہینے بعد خود ہی پتہ لگنے والی ہے. اب اس کے بعد ماں کے پیٹ سے اوپر اٹھا کر کائنات پہ لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ. دوبارہ آیت 11، لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. اس انسان کے لیے باری باری آنے والے پہرے دار مقرر ہیں جو اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ ہے اب آپ کا میرا سیکیورٹی سیٹ اپ. ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چوکی دار رکھے ہوئے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو پیچھے سورۃ الانعام آیت 61 میں ہم پڑھ چکے، کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، کہ اللہ تمہارے اوپر تمہارے محافظ بھیجتا ہے. فرشتے ہیں یہ. اصل میں یہ جو موقبات کا لفظ ہے نا، موقبتن کی جمع، مواقب پھر اس کی جمع بنتی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ باری باری سے روز و شب آنے والے فرشتے. موقبات وہ فرشتے ہیں جو ٹرن لے کر، یعنی ڈیوٹی شفٹ چینج ہو کر، فجر سے عصر اور عصر سے پھر فجر تک ہماری ہیلپ کرتے ہیں. چوکی دار، گارڈ مین. عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں نا، ہیل پیچھے سے. یعنی اللہ نے ہمارے اوپر فرشتوں کی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا بچے کو چوٹ لگتی ہے نا تو ماں کی جان نکل جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے تو کہتی ہے بالکل آنکھ کے نیچے چوٹ لگی ہے، کبھی ادھر لگتی ہے، اور ایک جملہ پھر ہم اکثر بولتے ہیں آنکھ بچ گئی ہے. آپ کو پتا کہ وہ آنکھ سے ہٹ کے نیچے کی چوٹ لگی اس فرشتے نے ہاتھ سے نیچے کر دی. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ انسانوں نے بھی ایک آنکھ بنائی نا گلاسز کی صورت میں. کئی بار ٹوٹتے ہیں ہمارے گلاسز، اور اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ مرنے کے بعد بھی ڈونیٹ کرنے کے قابل رہتی ہے. کرتی کیا ہیں یہ آنکھیں، یہ فرشتے؟ یحفظونہ، اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں، لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورۃ الانفطار کی آیت ہے. بے شک تمہارے اوپر محافظ ہیں. اسی طرح سورۃ طارق میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک آخری فرشتہ آ جائے گا جو اللہ کے عمر کو بتا دے گا ہمیں، من امر اللہ، اور وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ ہمارے اوپر مسلط ہے. اور جب وہ آئے گا نا تو پھر ہم کچھ اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکیں گے. ایسے وہ ہمیں لے جائے گا جیسے دودھ میں سے بال. آپ دیکھیے کہ کبھی اپنے اوپر لے کے سوچئے، آج میں ہوں اور میرے نہ ہونے میں کتنی دیر ہے اللہ کے ایک امر کی، امر اللہ. کوئی بندہ جو ابھی تک ہمارے ساتھ تھا اور آج نہیں ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس اس کا؟ صبح ایک سیشن ہوا، اس میں بات ہو رہی تھی. دیکھیے آواز بھی آج لوگ ہماری ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد آپ ہر ایک ہی اپنی ایک دوسرے کی آوازیں سنیں. آپ تو کوئی ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کی آواز نہ ہو، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ترستے تھے لوگ. پھر کبھی کوئی کہتا تھا نا وہ فلاں کی کسی موقع کی میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے، تو پھر خاندان والے منگاتے تھے، اچھا مجھے بھی دینا، مجھے بھی بھیجنا. ویڈیو کا تو تصور ہی کم تھا. آج تو بچے بچے اپنی آواز ریکارڈ کرتے ہیں. آواز بھی ہماری رہے گی، تصویریں ہماری رہیں گی، ویڈیوز بنا لیں یہ بھی رہیں گی. हमारी खरीदी हुई चीजें, हमारी ली दी हुई सब कुछ रहेगा। मौत की सूरत में क्या जाता है? जिस्म भी रख लीजिए, आज लोग स्काइप पे उसकी वीडियो बना के दिखा देंगे आपको, वो भी रहेगा। वो तो उसका मामला है ना, मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ कि जब कोई जाता है तो हम उसकी किस चीज से महरूम हो जाते हैं। दुआएं भी बाज लोग अपने जाने के बाद तक की दे के जाते हैं, रिश्तों से दूर हो जाते हैं। देखिए आप उसका लम्स नहीं पा सकते, अब आप उसको छू नहीं सकते, आप उनके हाथों की नरमी नहीं महसूस कर सकते, आप उनके माथे की गर्मी नहीं महसूस कर सकते, वो एहसास चले जाते हैं। और वो जब जाएगा तो लोग कुछ दिन में हमें भूल जाएंगे। आज है, फिर वो दुआएं तस्वीरें, एक तस्वीर लगा देंगे घर में बड़ी फ्रेम करा के, अब्बा जी की तस्वीर, ये अम्मा जी की तस्वीर, अम्मा जी की कुर्सी, ये अम्मा जी, वो थोड़े थोड़े दिन की बातें, उसके बाद फिर सब चले जाएंगे और हम अपने रब के सामने खड़े होंगे अपनी ज़िंदगी का हिसाब देने के लिए। फरिश्ते तो हिफाजत कर ही रहे हैं, जिस बंदे ने खुद अपने अमाल की हिफाजत कर ली अल्लाह उसकी बहुत मदद करेगा। इसलिए अब आगे बात कही कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, बेशक अल्लाह किसी कौम के हालात नहीं बदलता, हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक के वो उस कैफियत को नहीं बदलते जो उनके दिलों की है। इसको आपने मौलाना हाली के शेर में कई बार सुना हुआ है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल आप अपने हालत के बदलने की। यही आयत है, एक और जगह भी आएगी आगे जाके। तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे ना तो तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे। बड़ा गहरा ताल्लुक है, लिखिए जरा, हालत और हालात। हालत क्या है? बंदे का अंदर, नेक है के बद है, गुनाह है के नेकियां हैं, अल्लाह की रजा से जी रहा है कि नाफरमानी से। तो हालात क्या है? ये हमारा आउटर है, सेहत है के बीमारी है, दौलत है के गुर्बत है, इज्जत मिली हुई है के पस्ती, तुम लोगों की नजरों में ह्यूमिलेटेड हो या बहुत बड़ी एक जीनियस कौम हो, बस ये रब्त है। अंदर के काम हम बदल लें, ये कौमों के लिए भी आयत है, अफराद के लिए भी है। कौमों के लिए अल्लाह का यही असूल है कि जब तक कौमें अपनी हालत नहीं बदलती अल्लाह उनके हालात नहीं बदलता। क्योंकि वो इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन, और जब अल्लाह किसी कौम के लिए किसी बुरी चीज़ का फैसला करता है, मुराद यहाँ अजाब है, पकड़, फला मरद लहू, तो कोई उसको लौटाने वाला नहीं। मरद्दा के रूप में मीम नहीं आएगी, रद्द, वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और नहीं है कोई उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार। जब कौमें अपने हालात नहीं बदलती, तौर तरीके अतवार नहीं बदलती, तो अल्लाह ताला उनके हालात कभी नहीं बदलता। आप देखिए कि पीछे फरिश्तों के लिखने का एहसास दिलाया ना, और उसमें हदीस भी आती है सही बुखारी और मुस्लिम में, अबू हुरैरा से रिवायत है कि तुम्हारे फरिश्ते फजर और असर के वक्त शिफ्ट चेंज करते हैं। फिर जब अल्लाह ताला के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदे को किस हालत में छोड़ा, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला जब हम गए थे ना तो फजर की नमाज़ पढ़ रहा था, और अब आए हैं ना तो असर की नमाज़ पढ़ रहा है। और फरिश्ते अव्वल वक्त पे जाते हैं तो ज़ारे गवाही उसकी होगी जो अव्वल वक्त में पढ़ेगा, यही गवाही शाम के फरिश्ते भी देते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा फिर तुम गवाह रहना कि इनके बीच के गुनाहों को मैंने माफ़ कर दिया। हम पढ़े असर 5 बजे की बजाय 8 बजे, फरिश्ता तो 5 बजे चला गया, वो तो ये गवाही नहीं देगा। इसलिए नमाज हमेशा वक्त पे पढ़े। बहरहाल इसी तरह मुस्नद अहमद और मुस्लिम की रिवायत है, तुम में से हर एक के सामने एक फरिश्ता और एक जिन होता है यानी शैतान। अल्लाह के नबी, क्या आपके साथ भी है? कहा हाँ मेरे साथ भी है, हाँ लेकिन मेरा शैतान भी मुसलमान हो गया और वो मुझे नेकी के सिवा कोई और हुक्म नहीं देता। तो क्या पता चला, हम सब के इर्द गिर्द फरिश्ते भी हैं और जिन भी हैं। दूसरे लफ्जों में कहने हम सबको जिन चिमटे हुए, और हर गलत काम करने वाले को तो ज्यादा ही चिमटते हैं। उनकी गुलामी से आजाद होने के लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं। इसलिए अब इन्नल्लाह ला युगय्यिरु की बात करके बता दिया कि अब तुम अपने अमाल की फिक्र करो। आप देखिए, अगर हमें सिर्फ इस एक आयत का यकीन आ जाए ना, तो हम सारी गीतें छोड़ दें, चुगलियाँ छोड़ दें, बुराइयाँ छोड़ दें और गलत काम भी छोड़ दें। अब यहाँ कौम से क्या मुराद है? बिरादरी? नहीं, नेशन, बिरादरी। असल में यहाँ कौमों के रूज और जवाल की कहानी है। समझ लीजिएगा कि अल्लाह का मामला क़यामत के दिन भी और दुनिया में अफराद यानी सिंगल या इंडिविजुअल बेसिस पे हिसाब फ़र्क है और एक इज्तमाही माहौल में हिसाब फ़र्क है। ये ऐसे ही कि जैसे आप अपने बच्चे को किसी से ट्यूशन पढ़वाते हैं, वो वन ऑन वन बेस्ड होता है। आपका बच्चा है तो क्लास होगी, नहीं है तो नहीं होगी, वो पढ़ेगा तो पढ़ेगा, सुनेगा तो सुनेगा। लेकिन एक वो क्लास होती है जो सबके बीच में होती है, दोनों में फ़र्क होती है ना, स्टैटिक्स और फ़र्क होती है टेक्निक। अल्लाह ताला अल हासिब है, हिसाब ले रहा है। हर बंदे के साथ उसका अलग मामला क्या है, वो तो है वन ऑन वन बेस पे, वो तो इधर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ बात हो रही है कौमों के मामले की। आप अपने आप को लीजिए, इस वक्त तक मुसलमान एक कौम है। उरूज का फार्मूला है इसमें। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता, कब? जब तक के वो अपने मामलात को नहीं बदलते। और कौम किस चीज़ से मिलके बनती है? अपराध से। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो क्या पता चला कि एक एक फर्द जब अपनी इस्लाह शुरू करता है तो कौम बदल जाती है, जब कौम बदलती है तो अल्लाह उनके नसीब बदल देते हैं। कुछ अशार इस पे बहुत मारूफ है हमारे कल्चर में। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप और मैं इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की तकदीर को होल्ड किए हुए हैं। जब भी कोई मस्ती आए ना, तो याद सोच लें कि फिर मेरी वजह से सारे रुसवा होंगे। सब काम करेंगे, सब कोशिश करेंगे, फिर फायदा होगा। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि फितरत अफराद से इगमाज भी कर लेती है, यानी वन ऑन वन बेस पे अल्लाह ताला बहुत सारे बंदों को माफ कर देता है। इगमाज समझते हैं, ओवरलुक करना, सरफे नजर। मगर करती नहीं कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ। तो इज्तमाई गलतियों की सजा फिर नस्लों को भुगतनी पड़ती है। आज भी बहुत सारे लोग इनफरादी तौर पे बहुत नेक हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ है, ज़्यादा बुराइयाँ नहीं करते। लेकिन ओवरऑल देखिए तो उम्मत मुस्लिमा की आज हालत क्या है, ये हमें अल्लाह के यहाँ अपने मुकाम की खबर देती है। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी इस्लाह करें। आगे भी आएगा ये मज़मून तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ इस बात पे हम चंद मिनट के लिए रुकेंगे कि क्या मेरे किसी गुनाह की वजह से तो आज के मुसलमानों पे इल्ज़ामात नहीं लग रहे? अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहाँ एक सोच दी। देखिए कि यहाँ जो बात है ना कि हत्ता युगैर मां भी अनफुसीम, तो सवाल पैदा होता है कि आज मुसलमान कौम क्या करे। ज़रा देख लेते हैं कि आज जो कौमें अरूज रखती हैं उनके क्या फार्मूले हैं। नंबर एक, मेहनत। आज क्या करें हम मुसलमान? मेहनत करें। नंबर दो, कमिटमेंट करके निभाना। फिर देखिए, एजुकेशन का मस्ट होना, जुर्म है ना यहाँ बच्चों को घरों में रखना। फिर आप देखिए, आज तरक्की याफ्ता कौमें रिसर्च करती हैं। फिर इन्वेंशंस, नई नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं। फिर एविडेंसेस मांगते हैं, सबूत की बुनियाद पे इंसाफ मिल जाता है लोगों को। फिर आप देखिए, एजुकेशन के लिए कितना माल लगता है, तालीम आम है, हॉस्पिटल्स आम है, ये सब कुछ बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कौमें ऑर्गेनाइज्ड हैं, वक्त की पाबंद है। देखिए, दुश्मन ही हो कोई बात नहीं, लेकिन खूबियाँ तो उनके अंदर जो है उसका इकरार करना है। वक्त पे सोते हैं, वक्त पे जागते हैं। खाना कब खाते हैं ये लोग? हर वक्त, हमारी तरह। डिनर टाइम आपको होता है कि अंग्रेज़ों का क्या होता है जी? और हम कब खाते हैं आखिरी खाना? और खा के फिर जब सोते हैं तो फिर क्या होता है? फिर गहरी नींद आएगी ना। और वो क्या खाते हैं गरीब वीकडेज में? कोल्ड सैंडविचेस। सिर्फ कहते हैं कि वीकेंड्स में इनके घरों में गर्म खाना पकता है जिसकी खुशबू है, तभी तो ये हमारे होटलों पर टूट पड़ते हैं। हमारा तो चूल्हा कभी बंद ही नहीं होता, इनका तो चूल्हा बेचारों का कभी चलता है। अब वो कौमें जो गुजारे का खाती हैं, ठीक है खाते होंगे अपने हिसाब से, अच्छा, लेकिन काम करें। आज हम मुसलमान क्या हो गए? ऐश कुश, और हदीस में आता है कि मोमिन ऐश कोश नहीं होता। कल हम भी ऐसे ही थे, तभी हम दुनिया में अरूज पे थे। फिर आप देखिए जवाल शुदा कौमों की अलामतें हैं, सिस्टम पसंद नहीं करती, रूल्स को फॉलो नहीं करती, सुस्ती, काहली, लिथार्जिक। वो कहते जो मैं चाहूँ वो करो, मेरे लिए कोई रूल नहीं, सब के लिए सिवाय मेरे। एवरेज होने को अपने लिए पसंद करते हैं, मेहनती होने को बेवकूफ़ कहते हैं, खुद गर्जी को पसंद करते हैं। तुम सब टैक्स दो मैं तो नहीं दूंगा, तुम सब ये करो नहीं। और अगर कोई बेचारा थ्रू प्रॉपर चैनल कोई काम करे कहते हैं और बेवकूफ़ है। आज के दौर में कौन ऐसे काम करता है? अल्लाह ताला कहता है कि तुम क्या करो, तुम वो तब्दीली बन जाओ जो दूसरों में देखना चाहते हो। बहुत ही, अगर उम्मत का दर्द आपके दिल में हो तो आप इस आयत के दर्द को महसूस कर सकते हैं, वरना नहीं। आज हमें इस वक्त अपने आप को उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द की रोशनी में देखना है। अगर हम उसको मान गए तो आज देखिए कि आज से, आज की डेट लिख लीजिए, मैं अपने अंदर एक तब्दीली ले आऊँगी तो मेरे कम अज़ कम उम्मती होने के नाते से कितनों का भला हो जाएगा। और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। अपना काम कर रहे हैं तो करें। आप देखिए इनके ऑफिस में आप चले जाएं, जो काम कर रहे हैं वो आपको मुड़ के भी नहीं देखता। और हमारे मुल्कों में अगर किसी ऑफिस में चले जाएं, आप एक काउंटर पे बैठे बात कर रहे हैं ना किसी से, बाकी सब अपना काम छोड़ के आपकी बात सुननी शुरू हो जाएंगे। यानी कितनी ज़्यादा हमारे अंदर कमी है आज के दौर में। अल्लाह ताला हमारी हिदायत का सबब करे। लेकिन अल्लाह का ये कानून है कि जब लोग अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते तो नेमतें छिनती हैं।
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال